दिस इज़ विवेक कुमार हिंद, बीए पार्ट टू, फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेस। अब हम जा रहे हैं बीए पार्ट टू, समाजशास्त्र, पेपर थर्ड, भारतीय समाज की गत्यात्मकता, डायनेमिक्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। ये अगला अध्याय, जनसंचार, मास मीडिया। संचार मानव समुदाय के जीवन की अधूरी है, जिसके द्वारा मानव के सामाजिक संबंधों का निर्माण व विकास होता है। संचार के बिना मानव के सामाजिक जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। संचार ही मानव समाज की संचालन प्रक्रिया को संभव बनाता है। मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन, संचार का अर्थ। संचार को आंग्ल भाषा में कम्युनिकेशन कहा जाता है। कम्युनिकेशन शब्द लैटिन भाषा के कम्युनिस से बना है, जिसका अर्थ है टू मेक कॉमन, टू शेयर, टू इम्पोर्ट, टू ट्रांसमिट। सामान्य भागीदारी युक्त सूचना एवं उसका संप्रेषण है। इस प्रकार संचार वह प्रक्रिया है जो कि समाज में एक दूसरे से संबद्ध एवं उद्देश्यपूर्ण है। संचार के द्वारा लोग एक दूसरे के व्यवहार का नियंत्रण करने के साथ साथ उन्हें समूहों में संगठित भी करते हैं। इस प्रकार संचार वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्यों के परस्पर व्यवहारों के मध्य निहित बाधाएं छीन हो जाती हैं। इस प्रकार व्यक्तियों के मध्य संचार के द्वारा परस्पर समझदारी का विकास होता है। इस प्रकार संचार वह स्रोत और विकास है जिसके द्वारा सामाजिक सीख एवं समझदारी का विकास होता है। संचार सामाजिक प्रक्रियाओं की आधारशिला एवं संज्ञात्मक प्रक्रिया है। रोजर एवं सुमेकर के अनुसार संचार वह प्रक्रिया है जिसमें स्रोत एवं श्रोता के मध्य सूचना संप्रेषण होता है। इस प्रकार संचार विचारों के आदान प्रदान से संबद्ध है। रॉबर्ट हॉपर ह्यूमेन के अनुसार कम्युनिकेशन शब्द कम्युनिटी, कम्युनिटी कम्युनियन का सामान्यिक है। यह व्यक्तियों के मध्य किसी न किसी प्रकार की समता को भी इंगित करता है। संचार कठिनता, प्रतीकात्मक, समस्यायुक्त एवं विरोधाभासी प्रकृति का हो सकता है। इस प्रकार अनेक प्रकार का भी हो सकता है। सामान्य रूप में संचार प्रक्रिया तब व्यवहृत होती है जबकि कोई न कोई संदेश संप्रेषित किया जाता है, प्राप्त तथा विश्लेषित किया जाता है। इस प्रकार संचार संदेश और ग्राह्यता युक्त प्रक्रिया है, लेकिन इन दोनों प्रक्रियाओं का आधार उद्देश्य पूर्णता से युक्त है। संचार में संप्रेषण एवं ग्राह्यता उद्देश्य का पूर्ण सार्थक होने से युक्त है। संचार का सार्थक होना आवश्यक है। इसके अंतर्गत अनुभवों का आदान प्रदान किया जाता है। यह आदान प्रदान की क्रिया प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप में संपन्न होती है। संदेश का संप्रेषण किया जाता है। संदेश में अनुभव, वर्तमान व्यवहार एवं भविष्य की आवश्यकता निहित है। इस प्रकार दो व्यक्तियों में सार्थकता का निर्माण संप्रेषण से होता है। संचार संप्रेषण का एक अपना लक्ष्य भी होता है। यह व्यक्ति के व्यवहारों को प्रभावित करता है। संचार का अर्थ मानवीय संचार से है। पशुओं एवं अन्य प्राणधारियों में भी संचार होता है, परंतु प्रस्तुत अध्याय में वर्णित सामान्य रूप में संचार मानवीय समाज की संज्ञानात्मक प्रक्रिया है, जिसमें उद्देश्यपूर्ण एवं सार्थक अनुभवों, व्यवहारों एवं आवश्यकताओं का परस्पर आदान प्रदान किया जाता है। इसमें निश्चित लक्ष्य निहित होता है। यह व्यक्ति के व्यवहार को परिमार्जित एवं प्रभावित करता है। इसमें समता, भागीदारी की सूचना एवं संप्रेषण व अन्य प्रक्रियाएं भी सम्मिलित रहती हैं, जो कि संप्रेषक एवं श्रोता के मध्य स्वतः विद्यमान रहती हैं। संचार के प्रारूप, मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। ग्रीक दार्शनिक अरस्तु द्वारा आज से 2300 वर्ष पूर्व प्रस्तुत संचार का प्रारूप आज की अपेक्षा काफ़ी भिन्न था। अरस्तु ने संचार में मुख्य रूप से 5 चरणों या तत्वों को समाहित किया है। पहला वक्ता, संदेश, श्रोता, अवसर, तब प्रभाव। लासवेल के प्रारूप में भी मुख्य रूप से 5 चरण समाहित रहे। लासवेल के इस 5 प्रतिरूपों को 5 क से जाना जाता है। लासवेल का संचार प्रारूप प्रतीक 5 क, कौन, प्रेषक, अवयव या अभिव्यक्ति, स्रोत, क्या कहा, संदेश, अवयव या अभिव्यक्ति, संदर्भ, किस माध्यम से, अवयव या अभिव्यक्ति, संचार माध्यम, किसके लिए, अवयव या अभिव्यक्ति, श्रोता, क्या, प्रभाव, अवयव या अभिव्यक्ति, प्रभाव। गवर्नर द्वारा प्रस्तुत संचार प्रारूप संचार अवयव कुछ, इसकी अभिव्यक्ति श्रोता, घटना ग्राह्यता, इसकी अभिव्यक्ति ग्राह्यता पर अनुभूति एवं सिद्धांत, प्रतिक्रिया, इसकी अभिव्यक्ति संदेश की प्रभाविता मापन, एक स्थिति, इसकी अभिव्यक्ति सामाजिक व मनोवैज्ञानिक स्थिति, कुछ साधन, इसकी अभिव्यक्ति माध्यम, सामग्री की उपलब्धता, संगठन, अनेक रूपता, संचार व्यवस्थीकरण, संबंध में प्रदत्त संदर्भ, संदर्भ विश्लेषण, कुछ परिणाम। अरस्तु और गवर्नर के प्रारूप से स्पष्ट हो जाता है कि अरस्तु का प्रतिरूप उस समय का है जबकि संभवतः संचार मनुष्यों के मध्य मौखिक रूप में होता था। इसी कारण अरस्तु ने अवसर को महत्व अवश्य दिया है, परंतु संचार माध्यम का उल्लेख नहीं किया है। गवर्नर द्वारा प्रस्तुत संचार प्रारूप में प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप में अरस्तु द्वारा प्रस्तुत संचार रूप से समरूपता है। यद्यपि समरूपता के बावजूद काफ़ी भिन्नता भी है। डब्लू कार्ल डाइच ने संचार को चार प्रक्रियाओं से युक्त माना है। अनेक तत्वों तथा प्रक्रियाओं का सर्वे एवं एकीकरण। दूसरा, संचार में नवीन सूचनाओं तथा नए तथ्यों का प्रवाह। तीसरा, भविष्य की सूचना। चौथा, संचार प्रक्रिया में निहित तत्वों के मापन की सुविधा। उक्त चार तत्वों के संचार में कार्ल डाइच ने सम्मिलित किया। कार्ल डाइच द्वारा प्रस्तुत संचार प्रारूप में संचार के संदेश एवं उसके प्रारूप संबंधित तथ्यों पर विशेष रूप से जोर दिया गया है। बर्लेस ने संचार के अनेक अंगों को मुख्य रूप से चार संघटकों में विभक्त किया है। डेविस बर्लेस का संचार प्रारूप, इसे हम एक कॉलम बांटेंगे, उसमें चार भाग होगा। पहला स्रोत या सोर्स, दूसरा संदेश या मैसेज, तीसरा चैनल या संचार साधन, चौथा रिसीवर या संचार ग्राहक। तो पहला स्रोत हुनर, इसका संदेश अवयव, चैनल देखना, रिसीवर हुनर। दूसरा स्रोत है तरीका, इसका संदेश या मैसेज है स्वरूप, इसका चैनल या संचार साधन है सुनना, इसका रिसीवर या संचार ग्राहक है तरीका। तीसरा है सोर्स ज्ञान, इसका संदेश है संदर्भ, इसका संचार साधन है ध्वनित करना, इसका रिसीवर ग्राहक है ज्ञान। चौथा स्रोत है सामाजिक व्यवस्था, इसका संदेश है उपचार या निवारण, इसका चैनल या साधन है मुस्काना, इसका रिसीवर या संचार ग्राहक है सामाजिक व्यवस्था। और पांचवा जो स्रोत है वो है संस्कृति, जिसका संदेश है संकेत, इसका चैनल या संचार साधन है स्वाद लेना, इसका रिसीवर या संचार ग्राहक है संस्कृति। फ्रैंक ई एक्स ने संचार के नृत्य प्रारूप दैट इज डांस को वर्णित किया है। इनके अनुसार संचार प्रक्रिया लट्टू के घेरे हेलिकल स्पाइरल की भांति है। संचार भूत से प्रभावित होता था, प्रत्येक चरण में इसका नवीनीकरण होता है। सैनन एवं व्हीलर का संचार प्रारूप, सूचना कोष दैट इज इंफॉर्मेशन सोर्स, देन सेलेक्ट मैसेज चयनित सूचना, देन सूचना प्रेषक इनकोड एंड ट्रांसमीटर, देन सूचना संकेत मैसेज सिग्नल दैट इज संचार साधन या चैनल, संकेत ग्राह्यता सिग्नल रिसीव, प्राप्ति एवं ग्राह्य रिसीव्ड एंड डिकोड, संकेत देना डिलीवर मैसेज, देन गंतव्य स्थल दैट इज डेस्टिनेशन गंतव्य स्थल। सेनन एवं व्हीलर के द्वारा प्रस्तुत संचार प्रारूप में आधुनिक यांत्रिक संचार प्रक्रिया का स्वरूप दिखाई पड़ता है। उक्त के अलावा प्रतिपुष्टि की प्रक्रिया का इस रूप में अभाव है। बी कप्पू स्वामी ने अपनी पुस्तक कम्युनिकेशन एवं सोशल डेवलपमेंट इन इंडिया में संचार प्रारूप को पांच संघटकों में विभक्त किया है। बी कप्पू स्वामी का संचार प्रारूप, स्रोत प्रेषण संदेश संदेश ग्राह्यता गंतव्य स्थल दैट इज सोर्स इनकोडर मैसेज डिकोडर एंड डेस्टिनेशन। संचार के पूर्व वर्णित अनेक प्रारूपों में संचार प्रवाह में निहित संघटकों की अपर्याप्तता के कारण वे पूर्ण नहीं हैं। यहाँ तक कि सैनन और व्हीलर द्वारा प्रारूपित संचार प्रारूप प्रतिपुष्टि से युक्त नहीं है। अतः इस समस्या का निवारण रिहाइबर्ट डोनाल्ड यू और थॉमस बॉन के द्वारा प्रारूपित छः प्रक्रियाओं युक्त प्रारूप से हो सका है। इनकी छः प्रक्रियाओं में प्रतिपुष्टि या फीडबैक सम्मिलित है, यह निम्न प्रकार है। स्रोत देन प्रेषण साधन ग्राहक लक्ष्य सोर्स ट्रांसमीटर चैनल रिसीवर डेस्टिनेशन। उक्त संचार प्रारूप में भी अनेक कमियां हैं। यह प्रारूप वर्तमान समय में सामाजिक परिवेश में व्यवहारित संचार प्रक्रिया से युक्त नहीं है। रिसीवर और डेस्टिनेशन के मध्य संचार प्रवाह प्रक्रिया को पूर्ण नहीं करता। अतः इस प्रकार उक्त प्रक्रियाओं के अलावा संचार के विविध चरणों एवं समस्या बाधा से युक्त तथा पर्यावरण प्रक्रिया से संयुक्त संचार प्रारूप ही वास्तविक प्रारूप होगा। यह निम्न प्रकार का प्रारूप है। संचार के संघटक, पहला स्रोत संचार प्रक्रिया में स्रोत का मुख्य स्थान है। स्रोत का सामान्य अभिप्राय उत्पत्ति स्थल से है। समाज में समय समय पर घटनाएं घटती रहती हैं। प्रत्येक घटना सूचना नहीं होती। जिस घटना की सामाजिक उपयोगिता होती है वही घटना सूचना के रूप में सूचना संग्रह से संबद्ध व्यक्ति अथवा संस्थाएं सूचना को संग्रहित कर लेती हैं। यहीं से सूचनाओं का जन्म सामाजिक घटनाओं के गर्भ से होता है। सूचना का स्रोत व्यक्तिगत कथन या हाव भाव या संचार संगठन जैसे समाचार पत्र सिनेमा रेडियो टेलीविज़न इत्यादि भी हो सकते हैं। दूसरा चयनित साधन चयनित सूचना स्रोत व्यक्ति अथवा संस्थाएं प्रतिदिन भारी मात्रा में सूचनाओं को प्राप्त करते हैं। इन प्राप्त सूचनाओं में श्रोता अथवा समाज के लिए महत्वपूर्ण सूचनाएं ही प्रेषण के लिए चयनित की जाती हैं। इस चयन के पीछे सामाजिक महत्ता नवीनता श्रोता समूह इत्यादि का ध्यान रखा जाता है। चाहे व्यक्ति हो या संचार के आधुनिक माध्यम सभी के द्वारा सूचना प्रेषण में सामाजिक उपयोगिता का मुख्य रूप से ध्यान रखा जाता है। तीसरा है संप्रेषक कम्युनिकेटर। एक ही सूचना की प्रस्तुति और उसकी प्रभाविता में संप्रेषक के आधार पर अंतर आ जाता है। यह प्रभाविता सूचना को ठीक प्रकार से तैयार करने प्रेषित करने अच्छे प्रकार से बोलने एवं अच्छे लेखन इत्यादि कारणों से आती है। अरस्तु के अनुसार सद्गुण या ईमानदारी संप्रेषक की प्रभाविकता का महत्वपूर्ण तत्व है। संप्रेषक संचार प्रक्रिया का वह अंग है जो कि संदेश का संप्रेषण करता है। संप्रेषक की साख का संचार प्रक्रिया में महत्वपूर्ण स्थान होता है। संप्रेषक की प्रतिभा अथवा साख में सक्रियता और सुरक्षा भी महत्वपूर्ण अवयव है। संप्रेषक की सक्रियता का संबंध उसकी दृढ़ता गतिशीलता लगनशीलता एवं उसके प्रभावीपन से है। सुरक्षा तत्व के अंतर्गत संप्रेषक की दयालुता मित्रता ज्ञानशीलता परोपकारिता न्यायप्रियता सहिष्णुता इत्यादि प्रवृत्तियाँ मुख्य हैं। इसके अलावा चमत्कार भी संप्रेषक की साख का एक तत्व है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गांधी जी के शब्दों का जादू लोगों को आकर्षित एवं प्रभावित करता था। इसी प्रकार हिटलर चर्चिल कैनेडी नेहरू सुकर्णो आदि चमत्कारिक व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे। अगला संघटक संचार के है संदेश। संदेशों पर ही समाज का अस्तित्व टिका है। संचार प्रक्रिया का उद्भव निरंतरता संदेशों पर ही आधारित होती है। जब संदेशों का आदान प्रदान नहीं होगा तो उस स्थिति में संचार प्रवाह रुक जाता है। संदेश अपने कुछ निश्चित प्रतिमानों के आधार पर साकार रूप ग्रहण करता है। इनमें अर्थ भाषा संदर्भ स्वरूप इत्यादि महत्वपूर्ण हैं। संदेश प्रेषक के मस्तिष्क में उत्पन्न एवं स्वसंयत होता है जो कि संप्रेषण के द्वारा श्रोता तक पहुँचता है। सामान्य रूप में संचार प्रक्रिया में संदेश पर सूचना वह तत्व है जिसका कि संप्रेषण या आदान प्रदान किया जाता है। संपूर्ण संचार प्रक्रिया में संदेश की स्थिति मुद्रा की भांति है जिसके लिए मनुष्य अपने सांसारिक कार्य व्यापार को करता है। संचार स्वयं संदेश पर निर्भर है। संचार संदेश का संदेश के लिए एवं संदेश के द्वारा ही अस्तित्व में है। संदेश संचार की सभी प्रक्रियाओं का अभिन्न अंग है। श्रोता से संदेश मिलते हैं चयनित संदेश ही संप्रेषक भेजता है। संचार साधन एवं संचार माध्यम संदेश को प्रेषित करते हैं। श्रोता संदेश को ग्रहण करता है तथा पुनः उसे अन्य लोगों तक प्रेषित करता है। इस प्रकार संचार के प्रत्येक चरण का संदेश मूलाधार है। संदेश आर्थिक सामाजिक राजनीतिक धार्मिक मनोरंजन अन्य प्रकार के हो सकते हैं। पांचवा संघटक संचार का जो है वो है चैनल जिसे संचार मार्ग या साधन कहते हैं। संचार मार्ग के अंतर्गत संचार संप्रेषण या संचार ग्रहण करने की प्रक्रिया निहित है जिसके द्वारा संवेदनशील अवयवों का पुंज सूचना को प्रेषित एवं ग्रहण करता है। संप्रेषित संदेश शाब्दिक एवं अशाब्दिक वर्बल एंड नॉन वर्बल दोनों प्रकार का हो सकता है। लिखने और बोलने के अलावा हाव भाव इत्यादि प्रकार से संदेशों का संप्रेषण होता है। इस प्रकार टेलीफोन संचार में संचार मार्ग टेलीफोन वायर तथा अंतर व्यक्ति संचार में संवेदनशील शारीरिक अंग है। संवेदनशील अंग शरीर में सूचना ग्रहण करते हैं। इनमें मुख्य सुनना देखना एवं स्पर्श लिखने और बोलने के अलावा हाव भाव इत्यादि प्रकार से संदेशों का संप्रेषण होता है। इस प्रकार टेलीफोन संचार में संचार मार्ग टेलीफोन वायर तथा अंतर व्यक्ति संचार में संवेदनशील शारीरिक अंग है। संवेदनशील अंग शरीर में सूचना ग्रहण करते हैं। इनमें मुख्य है सुनना देखना एवं स्पर्श। इस प्रकार प्रत्यक्ष एवं सांगठनिक संचार में संवेदनशील अंग संचार मार्ग का कार्य करते हैं। जनसंचार में प्रमुख संचार मार्ग है समाचार पत्र, दैट इज फिल्म प्रिंट, फिल्म दृश्य श्रव्य, रेडियो श्रव्य, टेलीविज़न दृश्य श्रव्य। इनमें समाचार पत्र से जुड़ा है शेष फिल्म, रेडियो, टेलीविज़न विद्युतीय तरंग प्रवाह से जुड़े हैं, अतः इनमें संचार संप्रेषण प्रक्रिया में निहित विद्युतीय तरंग संचार मार्ग है। सूचना प्रवाह में एक एवं एक से अधिक संचार मार्ग का प्रयोग होता है। जैसे कोई तत्कालीन महत्वपूर्ण समाचार मिलने पर व्यक्ति अनेक संचार मार्गों से संचार पुष्टि करता है। व्यक्तिगत तथा सांस्कृतिक अवयव संचार मार्ग के चयन में मुख्य आधार होते हैं। संचार प्रक्रिया में संचार मार्ग वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा स्रोत से श्रोता तक संदेश संप्रेषित होता है। इस प्रकार संचार मार्ग वह साधन है जिसके द्वारा स्रोत द्वारा प्रेषित सूचना को श्रोता प्राप्त करता है। जनसंचार माध्यम के मार्ग में वे सभी साधन निहित हैं जो कि संदेश प्रवाह में संचार माध्यमों जैसे रेडियो, टेलीविज़न, फिल्म, समाचार पत्रिका इत्यादि को संयुक्त करता है। संचार मार्ग वह साधन है जिसके द्वारा स्रोत से श्रोता संदेश पाता है। छठा संचार का जो संघटक है वह है संचार माध्यम। संचार माध्यम अंग्रेजी के मीडिया से बना है जिसका अभिप्राय होता है दो बिंदुओं को जोड़ने वाला। संचार माध्यम भी संप्रेषक एवं श्रोता को परस्पर जोड़ते हैं। हैरोल्ड लॉसवेल संचार माध्यम के मुख्य कार्य सूचना संग्रह एवं प्रसार, सूचना विश्लेषण, सामाजिक मूल्य, माध्यम एवं ज्ञान का संप्रेषण, लोगों का मनोरंजन करना है। संचार माध्यम का प्रभाव समाज में अनादि काल से ही रहा है। संचार माध्यम स्रोत एवं श्रोता के मध्य एक मध्यस्थल दृश्य है जो कि मुख्यतः सूचना लेता स्रोत से है तथा देता श्रोता को है। संचार माध्यम को मुख्य रूप से दो भागों में यानी परंपरागत संचार माध्यम और जन संचार माध्यम। परंपरागत संचार माध्यम के अंतर्गत नाटक, गीत, नृत्य अन्य और जन संचार माध्यम के अंतर्गत प्रेस और इलेक्ट्रॉनिक। पहला, परंपरागत संचार माध्यम। प्राचीन भारत में परंपरागत संचार माध्यम का संचार के अवयव के रूप में विशिष्ट महत्व था। परंपरागत संचार माध्यम सामाजिक उत्सवजन्य भौतिक एवं भावावेशी आवश्यकताओं के उपकरण हैं जिनकी आवश्यकता संबद्ध उन भाषाई समूहों को है जिससे वे संबद्ध हैं। भारत में प्राचीन संचार प्रक्रियाएं सांस्कृतिक दृष्टि से अनेक हैं और उनका प्रभाव विकासात्मक है। इनके नाम भी अनेकों हैं। मुख्य रूप से इन्हें परंपरागत संचार माध्यम कहा जाता है। यह मुख्य रूप में मौखिक संचार के रूप में जैसे कथा, रामलीला का संगीत, डायलॉग के मंचन, रामायण व महाभारत राष्ट्रीय संस्कृति की यादें हैं। परंपरागत संचार माध्यम मुख्य रूप से ग्रामीण समुदाय के जीवन से जुड़े हैं। यह इस प्रकार की संचार प्रक्रिया है जिसमें मौखिक गायन, वादन, दृश्य कला का संप्रेषण एवं स्थानांतरण सामाजिक समूहों में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को होता रहता है। यह वर्षों से समाज में विभिन्न प्रकार के अंतर समूह, अंतर ग्रामीण संचार साधन के रूप में संचार प्रक्रिया को बनाए हुए हैं। परंपरागत संचार माध्यम का अस्तित्व उनकी अपनी गतिशीलता और निरंतर व्यवहार से है। परंपरागत संचार माध्यम में मुख्य है प्राचीन कला, संगीत, ग्रामीण नाटक एवं कठपुतली। दूसरा, हरि कथा। तीसरा, कहानी, किस्सा, गारी, गीत। चौथा, उत्सव, त्यौहार, ग्रामीण सभा एवं मेला। पाँचवा, सामाजिक संस्थाएं एवं ग्रामीण मुखिया। छठा, ग्रामीण कला एवं व्यवसाय, परंपरागत डिजाइनें इत्यादि हैं। अब हम बात करेंगे जन संचार माध्यम की जिसके अंतर्गत प्रेस और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। जन संचार माध्यम वर्तमान औद्योगिक एवं तकनीकी समाज की देन है। प्राचीन समय में लोग जब छोटे छोटे समूहों में निवास करते थे उस समय आमने सामने के संपर्क से मानव जुड़ा था। वर्तमान समय में लाखों लोगों तक एक साथ संचार माध्यमों द्वारा सूचनाएं प्रेषित की जाती हैं। यह सब तकनीकी क्रांति का परिणाम है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट मास मीडिया। जन संचार। जन संचार वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्तिवादिता का उन्मूलन हो जाता है। जन संचार तकनीकी पर आधारित जन आधारित संदेश उत्पादन एवं जन संप्रेषण की प्रक्रिया है। इसका उद्देश्य शिक्षण एवं मनोरंजन करना है। इस उद्देश्य के लिए समाचार पत्र, समाचार एजेंसी, सिनेमा, रेडियो, टेलीविज़न इत्यादि प्रमुख हैं। एक साथ लाखों लोगों को संचार प्रवाह से जन संचार माध्यम के द्वारा जोड़ना वर्तमान तकनीकी विकास से ही संभव हो सका है। अमेरिका एवं ब्रिटेन के अध्ययनों के अनुसार लोग टेलीविज़न के कार्यक्रमों की उपेक्षा नहीं कर पाते हैं, अतः टेलीविज़न अन्य संचार माध्यमों की अपेक्षा प्रभावशाली संचार माध्यम है। जनसंचार माध्यम से लोगों के आचरण भ्रष्ट बनने का खतरा सदा ही बना रहता है। इनके द्वारा व्यक्ति अपनी व्यक्तिवादिता को समाप्त कर जन समाज का अंग बन जाता है। अपराधिता और अपराध से संबद्ध अपराध और हिंसा के बुरे प्रभाव फिल्म और टेलीविजन कार्यक्रमों से प्रभावित पल्लवित होते हैं। इसके विपरीत जनसंचार माध्यम सामाजिक विकास की प्रवृत्ति को भी बढ़ावा देता है। जनसंचार माध्यमों के संदेशों का प्रभाव व्यक्ति एवं उसके सामाजिक व्यवहार की रक्षा में भी महत्वपूर्ण है। व्यक्ति के अंतर्व्यक्ति संबंध परिवार तथा अन्य प्राथमिक समूहों में भी जनसंचार माध्यम से प्रभावित होते हैं। जनसंचार माध्यम का श्रोता वर्ग बिखरा व विश्रृंखल या भिन्न प्रकार का होता है, जैसे हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, स्टेट्समैन, इंडियन एक्सप्रेस इत्यादि समाचार पत्र अपने प्रकाशनों को अनेक शहरों और गांवों के लोगों को उपलब्ध कराते हैं। इसके अतिरिक्त एक फिल्म की अनेक प्रतियों के माध्यम से एक साथ समाज के अनेक लोग स्थानों में देखते हैं। इस प्रकार जनसंचार माध्यम के श्रोता वर्ग का आकार बड़ा होता है या श्रोता समूह विषम होता है। इससे भिन्न भिन्न उम्र, भिन्न शिक्षा एवं आर्थिक दशा वाले श्रोता समूह सम्मिलित होते हैं। जनसंचार माध्यम का संदर्भ विषम लोगों के समूह के मध्य संचारित होता है। जनसंचार माध्यम के संदेश अस्थिर स्वभाव वाले होते हैं, जो हम रेडियो से सूचना पाते हैं, समाचार में पढ़ते हैं एवं सिनेमा में देखते हैं, सब के सब क्षण भर के स्वभाव वाले होते हैं। जनसंचार के मात्र कुछ भाग का महत्वपूर्ण स्थायी रूप में होता है, जैसे समाचार पत्र द्वारा ऐतिहासिक महत्व के कुछ संदर्भों का विश्लेषण एवं भाषणों का प्रसारण स्थायी प्रभाव एवं महत्व होता है, जैसे कि गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू के भाषणों का अस्थायी ऐतिहासिक महत्व एवं प्रभाव है। अब हम बात करेंगे जनसंचार माध्यम के कार्य। हेरोल्ड लॉसविल ने जनसंचार माध्यम का मुख्य कार्य सूचना संग्रह प्रसार, सूचना विश्लेषण, सामाजिक ज्ञान एवं मूल्यों का ऑपरेशन माना है। वर्तमान सामाजिक व्यवहारों को देखते हुए मनोरंजन को भी जनसंचार माध्यम का कार्य माना गया है। उपरोक्त प्रक्रियाएं न मात्र वर्तमान समाज में ही तथा जनसंचार माध्यम के द्वारा संचालित होती हैं, वरन प्रत्येक समाज में संचार के यही मुख्य चार कार्य होते हैं। पहला, सूचना संग्रह एवं प्रसार का कार्य जनसंचार माध्यम करते हैं। समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविज़न, फिल्म, देश और विदेश की सूचनाओं को संग्रहित एवं संप्रेषित करते हैं। समाचार का संप्रेषण एवं प्रसार उसकी उपयोगिता पर निर्भर करता है। यह लोगों को सामान्य रूप से कार्य में सहायक तथा बाधाओं से रक्षा करता है। संचार माध्यम सूचना के संग्रह और प्रसार के द्वारा समाज के लोगों की सूचना समाज के अन्य लोगों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। संचार माध्यमों की सूचना में व्यक्ति जिसे भी जिस रूप में स्थान पाता है, उसी के अनुरूप उसका सामाजिक स्तर भी बनता है। जिन व्यक्तियों का उच्च सामाजिक स्तर होता है, जनसंचार माध्यम उस व्यक्ति की कार्य प्रणाली को प्रभावी रूप में प्रेषित करते हैं, जैसे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, ईटीसी। समाचार सामाजिक मान्यताओं के अनुरूप सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रवृत्ति के होते हैं। जनसंचार माध्यम यदि कभी विज्ञान की प्रगति की कथा कहते हैं, तो कभी कभी उसके स्वरों एवं दोषों के प्रति भी लोगों को सावधान करते हैं। दूसरा, सूचना का विश्लेषण रेडियो, समाचार पत्र, टेलीविज़न इत्यादि संचार माध्यमों के द्वारा किया जाता है। प्रत्येक घटना और आदेश पर संपादकीय विश्लेषणात्मक लेख वार्ता वृत्त चित्र संचार माध्यम प्रतिदिन या सप्ताह में या अवसर विशेष पर प्रसारित या प्रेषित करते रहते हैं। विश्लेषण का मुख्य कार्य लोगों को प्रभावित करना होता है। समाचार पत्रों में संपादकीय लेखन स्वतंत्रता के पूर्व भी होता था, जिसमें मुख्य रूप से लोगों में स्वतंत्रता की भावना एवं प्रवृत्ति का संदेश होता था। संचार माध्यमों द्वारा विश्लेषण उन्हीं घटनाओं पर या आदेशों पर किया जाता है जो कि लोगों के लिए आवश्यक होते हैं। संचार माध्यम अनेक विचारकों व विद्वानों को अपना विचार प्रेषित करने का अवसर अथवा मौका देते हैं। अनेक संचार माध्यमों के द्वारा व्यक्ति का बहुआयामी विकास होता है। इनके द्वारा सामान्य विचार, दृष्टिकोण एवं मूल्यों का विकास होता है। संचार माध्यम समाजीकरण के अभिकरण है। तीसरा, रेडियो, समाचार पत्र, टेलीविज़न एवं अन्य संचार माध्यमों के द्वारा समाज के लोग मात्र घटनाओं की सूचना ही नहीं पाते, वरन समाज के जीवंत प्रश्नों, उनके परिणामों, अनेक नीतियों का ज्ञान जो कि समस्याओं के निदान के लिए बनाई जाती है इत्यादि की भी सूचना पाते हैं। संचार माध्यमों के द्वारा अनेक प्रकार की सूचनाओं एवं उनके प्रति व्याप्त सामाजिक दृष्टिकोण इत्यादि के द्वारा व्यक्ति के ज्ञान स्तर की वृद्धि होती है। जन संचार माध्यम स्कूली शिक्षा के भी अंग बनते जा रहे हैं। जन संचार माध्यम लोगों के ज्ञान की वृद्धि में सहायक होने के साथ साथ सामाजिक तथा मानवीय मूल्यों की शिक्षा भी लोगों को देते हैं। चौथी बात, संचार माध्यम लेख, वृत्त चित्र, फिल्म, कार्टून, संगीत, कविता इत्यादि प्रकार से लोगों का मनोरंजन करते हैं। वर्तमान समय में सिनेमा एवं अन्य प्रसारण माध्यम मनोरंजन के प्रभुत्व सामाजिक साधन हैं। फिल्म के दिवा स्वप्न में व्यक्ति अपने दैनिक कार्यभार एवं समय से मुक्ति पाता है। विविध भारती संगीत एवं फिल्मी गीतों के रिकॉर्ड या अच्छा उपन्यास या अच्छी उपन्यास पर आधारित फिल्मों में मनोरंजन की प्रचुरता के नाते समाज के लोगों के मध्य अच्छी लोकप्रियता हासिल करते हैं। मनोरंजन बहुसंख्यक लोगों की अभिरुचि से प्रभावी होता है। सामान्य रूप में जन संचार माध्यमों की आलोचना की जाती है कि वे सामाजिक व्यवहार को प्रभावित करते हैं। विशेष रूप से 13 से 19 वर्ष की अवस्था वाले लोगों को अधिकतर लोग मनोरंजन, अपराध, फिल्मी पत्रिकाएं पढ़ते एवं अपराध युक्त सिनेमा देखते हैं। मनोरंजन का अभिप्राय भावनात्मक एवं संवेदनशील उत्पादन से जुड़ा होता है। लोग फिल्मी हीरो का अनुकरण भी अपने दैनिक जीवन में करने लगते हैं। इस प्रकार वर्तमान समय में जन संचार माध्यम जन मनोरंजन के प्रमुख आधार हैं। राजनीतिक अपवाह भी जन संचार माध्यम द्वारा संचालित की जाती है। जन संचार माध्यमों की महत्वपूर्ण भूमिका आर्थिक मामलों में भी है। इनके द्वारा बाजार भाव एवं महत्वपूर्ण आर्थिक सूचनाएं प्राप्त होती हैं। विज्ञापनों के माध्यम से खरीद फरोख्त और बिक्री से भी जन संचार के माध्यम जुड़े हैं। जन संचार माध्यम वर्तमान समाज के अभिन्न अंग हैं। सामाजिक सूचनाओं के अलावा राजनीतिक सूचनाओं एवं राजनीतिक घटनाओं की जानकारी तथा दिन प्रतिदिन के राजनीतिक विकास की खबरें जन संचार माध्यमों के द्वारा प्राप्त होती हैं। जन संचार के द्वारा व्यक्ति के समाजीकरण की प्रक्रिया समाज में चलती रहती है। इसके अन्य कार्य, पांचवा, जन संचार माध्यम के अन्य कार्य। संचार माध्यमों के द्वारा शासन अथवा जन नियंत्रण का कार्य प्राचीन काल से होता चला आया है। वर्तमान समय में शासन व्यवस्था जन नियंत्रण के लिए दिन प्रतिदिन जन संचार माध्यमों पर निर्भर होती जा रही है। कर्फ्यू की घोषणा हो या धारा 144 अथवा आपातकाल की, उसे जन संचार माध्यमों द्वारा घोषित एवं प्रसारित किया जाता है। कोई अपराधी दिल्ली या भारत के किसी क्षेत्र से गायब हो गया हो तो उसकी फोटो समाचार पत्र टेलीविजन के द्वारा प्रसारित की जाती है। रेडियो के द्वारा उसकी पहचान का सारण किया जाता है। कोई व्यक्ति अगर कोर्ट की नोटिस या आज्ञा की अवहेलना करता है तो उसे उसके पास पड़ोस तक उपलब्ध संचार साधन के द्वारा सूचना दी जाती है। बैंक द्वारा या कोर्ट द्वारा की गई नीलामी की सूचना में संचार माध्यमों का उपयोग होता है। वर्तमान प्रजातांत्रिक व्यवस्था में चुनाव की घोषणा अथवा चुनाव के प्रचार में संचार माध्यमों का उपयोग निरंतर बढ़ रहा है। प्रतिवर्ष संसद, विधानसभाओं, न्यायालयों, केंद्रीय और राज्य सरकारों द्वारा अनेक आदेश एवं कानून निर्मित तथा लागू किए जाते हैं। प्रत्येक आदेश एवं कानून की सूचना जन जन तक संचार माध्यमों के द्वारा पहुँचती है। संचार माध्यमों द्वारा कर्फ्यू, आपातकाल, धारा 144, कुर्की, नीलामी, नए कानून एवं आदेशों इत्यादि की सूचना पर अमल करने कराने का कार्य संचार माध्यम ही करते हैं। यदि माना किसी विमान की उड़ान दिल्ली से रद्द कर दी गई, इसकी सूचना रेडियो, टेलीविजन और किसी संचार माध्यम से प्राप्त करने के पश्चात उस विमान से यात्रा करने वाला व्यक्ति हवाई अड्डे नहीं जाएगा। इस प्रकार जन प्रशासन, जन व्यवहार नियंत्रण का कार्य वर्तमान समय में जन संचार माध्यमों द्वारा किया जा रहा है। रोल ऑफ मास मीडिया इन मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकीकरण में जन संचार की भूमिका। आधुनिकीकरण का निर्धारण वर्तमान समय में व्यक्ति के जीवन मार्ग में परंपरागत तौर तरीकों में परिवर्तन कर आधुनिक मूल्यों से संबद्ध होता है। तकनीकी तथा गतिशीलता की दृष्टि से जीवन के कार्य प्रक्रिया में तेजी से परिवर्तन आता है। इस प्रक्रिया में संचार और नए विचारों की स्वीकृति सम्मिलित होती है। इस प्रक्रिया का हम परीक्षण गांवों में कर सकते हैं। इस प्रकार संचार परिवर्तन को क्रियान्वित तथा सुरक्षित करने में महत्वपूर्ण कारक है। बाह्य स्रोता से होने वाले संचार के द्वारा गांवों में थोड़ा परिवर्तन आता है। इससे किसान के ज्ञान स्तर में वृद्धि होती है, उनके व्यवहारों, तौर तरीकों में परिवर्तन और आधुनिकीकरण का ज्ञान महत्वपूर्ण कारक है। संचार प्रक्रिया के रूप में आधुनिकीकरण का प्रारंभ कम विकसित राष्ट्रों अथवा समुदायों में होता है। आधुनिकीकरण के संदेश तकनीकी व आर्थिक राजनीतिक तथा सामाजिक नए तौर तरीकों से संबद्ध होते हैं। सरकारी योजनाओं के निर्माता वैज्ञानिक परिवर्तन के अभिकरण के रूप में कार्य करते हैं। राजनीतिक संचार उस समय होता है जबकि राज्य व्यवस्था के एक भाग से मांगे, निर्णय आदि दूसरे भाग तक जाती हैं। राज्य व्यवस्था इस प्रकार के संचार के बिना चल नहीं सकती। राज्य व्यवस्था में संचार के द्वारा ही गतिशीलता आती है। राजनीतिक संचार उन्हीं विशेषीकृत संस्थानों की गतिविधियों को निर्देशित करता है जो कि सरकारी सूचना व्यवहार विचार के निमित्त स्थापित हैं। इसके अंतर्गत संसदीय पत्र, ज्ञापन, संवाद तथा तथ्य इत्यादि सम्मिलित हैं। राजनीतिक संचार वह संचार प्रक्रिया है जिसमें नागरिक, शासन एवं सरकार तथा इससे संबद्ध अनेक निकायों की मांगों, निर्णयों, मूल्यों, विचारों, भागीदारी, आदेशों, प्रतिक्रियाओं की सूचना संचारित होती है। नागरिकों की राजनीतिक भागीदारी जनसंचार माध्यमों के विस्तार पर निर्भर है। राजनीतिक ज्ञान को आधुनिकीकरण का मानक मान सकते हैं। राजनीतिक आधुनिकीकरण के तहत राजनीति से संबंधित पहलुओं को लेकर मनुष्य के दृष्टिकोण में परिवर्तन आता है। इतना ही नहीं, व्यक्तियों का अभिज्ञान राजनीतिक व्यवस्था तथा उसके अनेक पक्षों तक फैलने लगता है। राजनीतिक ज्ञान के द्वारा व्यक्ति प्रभावी रूप में आवश्यक नागरिक कार्य व्यवहार को संचालित करता है। जनसंचार आधुनिकीकरण के एजेंट की भांति है। नए विचार, राजनीतिक ज्ञान एवं नए मूल्यों के अनुकरण में संचार माध्यमों का महत्वपूर्ण योगदान है। जनसंचार माध्यम प्रभावी ढंग से राजनीति, ज्ञान, सरकार, नेतृत्व से जुड़े होते हैं। भारत में स्वतंत्रता के समय से सामाजिक एवं राजनीतिक स्वरूप का परिवर्तन एवं आधुनिकीकरण हुआ है। राजनीति में जन भागीदारी एवं समूह के हितों का स्वरूपीकरण प्राचीन संचार संस्थाओं जैसे जाति संघ इत्यादि के स्थान पर हुआ है। आधुनिकता परंपरा विरोधी है तथा जनसंचार वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्तिवादिता समाप्त हो जाती है। राजनीतिक संचार प्रक्रिया में मांग और निर्णय एक स्थान या भाग से दूसरे भाग तक पहुंचते हैं। चाहे कोई भी शासन व्यवस्था हो, राजनीतिक आधुनिकीकरण के तहत राजनीति से संबंधित पहलुओं के प्रति मनुष्य के दृष्टिकोण में परिवर्तन आता है। व्यक्तियों का अभिज्ञान राजनीति व्यवस्था तथा उसके अनेक पक्षों तक फैलने लगता है। उपरोक्त उद्धृत संदर्भों के समलब्धि के द्वारा राजनीतिक आधुनिकीकरण एवं संचार प्रक्रिया प्रभावी होती है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था हो या तानाशाही, सभी जनमत के प्रति सजग रहते हैं। राजनीतिक धारणा अथवा विश्वास में लोगों के व्यवहार, विश्वास, मूल्य एवं प्रतिक्रिया के अनुरूप परिवर्तन आता है। जनसंचार के विकास का राजनीतिक गतिविधि पर व्यापक प्रभाव है। आकाश संचार ने राज्यों और देशों की भौगोलिक सीमाओं को खत्म कर दिया है। सूचनाएं राष्ट्रों की सीमाएं पार कर जाती हैं। कूटनीति का आदान प्रदान राष्ट्रीय सरकारों में वार्ता, विचार, अनुभव, प्रस्ताव, मामले, चेतावनी, विरोध इत्यादि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में व्यवहारित होने वाली संचार प्रक्रियाएं हैं। राष्ट्रीय हितों की वृद्धि करने वाली एवं हितों के अनुरूप जनमत निर्माण करने वाली सूचनाएं दूसरे देश के लोगों को दी जाती हैं। संचार विदेश नीति का निर्धारक तत्व भी है। शांति के समय के प्रसारणों में युद्ध के समय के प्रसारणों की अपेक्षा काफी परिवर्तन आ जाता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सरकार सूचना एवं अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण के अनुसार विदेश नीति का निर्धारण करती है। स्पष्ट है कि संचार प्रत्येक शासन व्यवस्था के आंतरिक एवं बाह्य नीतियों एवं उनके स्वरूप का निर्धारक तत्व है। संचार के गगनचारी होने से जब राष्ट्रों की भौगोलिक सीमाएं टूट गईं, तो स्वाभाविक है कि संचार की इस प्रक्रिया के द्वारा नए राजनीतिक दृष्टिकोण एवं नए राजनीतिक ज्ञान एवं नए मूल्यों का प्रसार भी स्वाभाविक रूप से होता है। नए मूल्य परंपरा विरोधी एवं आधुनिकीकरण से जुटे होते हैं। अतः जनसंचार माध्यमों द्वारा राजनीतिक संचार एवं राजनीतिक आधुनिकीकरण की प्रक्रिया निरंतर जारी रहती है। परंतु इस प्रकार के संचार की दिशा विकसित करने व्यवस्था वाले समुदाय राष्ट्र इत्यादि से अविकसित व्यवस्था वाले समुदाय राष्ट्र की ओर होती है। नेक्स्ट टॉपिक, जनसंचार और ग्रामीण विकास, मास मीडिया एंड रूरल डेवलपमेंट। भारत के ग्रामीण समुदाय से संप्रेषण की प्रक्रिया अति महत्वपूर्ण तथा दुरूह है। इसका औचित्य इसका न मात्र सूचित एवं प्रशिक्षित करना ही होना चाहिए, वरन लोगों में अभिरुचि उत्पन्न करने वाला होना चाहिए। लोगों की भागीदारी तभी संभव है जबकि विकास, आधुनिकता, विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण एवं उपयोगी सूचनाएं ग्रामीण लोगों को सरल, सुस्पष्ट भाषा एवं प्रतीकों के साथ प्रेषित किए जाएं। तीन प्रकार के संचार समूह ग्रामीण संचार व्यवस्था में व्याप्त हैं। पहला परंपरागत संचार प्रक्रिया युक्त या आधुनिक संचार प्रक्रिया रिक्त समूह, दूसरा एक जन संचार माध्यम युक्त समूह, तीसरा अनेक जन संचार माध्यम युक्त समूह, नवीन संचार तकनीकी एवं नव संचार विधाओं का उपयोग उक्त प्रथम एवं द्वितीय समूह तक सीमित रहता है। ग्रामीण विकास के लिए कार्य करने वाली अनेक एजेंसियां मुख्य रूप से कृषि विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवार नियोजन एवं नागरिक संगठनों से संबद्ध होती हैं। संचार माध्यम ग्रामीण विकास कार्य में संलग्न लोगों के लिए महत्वपूर्ण पूरक अवयव के रूप में ही सैद्धांतिक रूप में ग्रामीण विकास को संचार विकास प्रक्रिया से संबद्ध विचारों की स्वीकृति के द्वारा प्रभावित करता है। इसमें मात्र यही नहीं सम्मिलित है कि संचार परिवर्तन में किस प्रकार योगदान दे सकता है, वरन यह भी निहित है कि किस प्रकार के परिवर्तन की प्रक्रिया के द्वारा ग्रामीणों के विकास में तीव्रता लाई जा सकती है। भारत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए नीति एवं योजनाओं का निर्धारण इस रणनीति के तहत किया है कि ग्रामीण क्षेत्रों का अधिक से अधिक विकास हो सके। इसके तहत बैंक, अन्य आर्थिक नियोजन संस्थान एवं शोध संगठन इत्यादि ग्रामीण जीवन की दशा सुधारने में लगे हैं। नए उद्योग अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों में लग रहे हैं। ग्रामीण भारत के विकास ने नया बाजार उपलब्ध कराया है। भारत में 1981 की जनगणना के अनुसार 3,949 नगर, 5,57,138 बसें और 4,808 गैर बसें गांव हैं। इस प्रकार गांवों की कुल संख्या 6,05,224 है। भारत की में गांवों की संख्या शहरों की लगभग 154 गुना है। विकास संचार का वास्तविक क्रियान्वयन भारत के अविकसित ग्रामीण क्षेत्रों तक विकास संदेश प्रेषित कर ही संभव बनाया जा सकता है। गांवों के विकास के नाम पर होने वाले आर्थिक व्यय का समुचित उपयोग तभी संभव है जबकि ग्रामीण समुदाय के लोग इस आर्थिक व्यय एवं उसके लाभों से अवगत हों। ग्रामीण समुदाय ऐसे अविकसित क्षेत्र हैं जहाँ अंतर व्यक्ति एवं परंपरागत संचार माध्यमों का व्यापक प्रभाव है और थोड़ी मात्रा में जनसंचार माध्यमों की घुसपैठ है। परंपरागत संचार माध्यमों का स्थान ज्यों ज्यों जनसंचार माध्यम लेते जा रहे हैं त्यों त्यों ग्रामीण विकास की दिशा में गतिशीलता आती जा रही है। प्रौढ़ शिक्षा, ग्रामीण स्वास्थ्य, हरित क्रांति इत्यादि के कार्यान्वयन एवं प्रसार में संचार माध्यमों की भूमिका मुख्य रही है। आधुनिक खादों का प्रयोग इस समय गांवों में व्यापक रूप से हो रहा है परंतु प्रारंभ में किसान इसे अपनाने से हिचकता था। आज संचार माध्यमों के प्रचार का परिणाम है कि उर्वरक पर्याप्त मात्रा में किसान को मिल नहीं पा रही है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम के दौरान भी संचार माध्यमों का ग्रामीण विकास के लिए भरपूर उपयोग किया गया। सामुदायिक विकास से संचार के संबद्ध होने पर समुदाय के संदेशों एवं समुदाय के निर्णय प्रक्रिया में निकटता आ गई। संचार पहला समस्याओं के समाधान, दूसरा महत्वपूर्ण सूचनाएं देने, तीसरा समुदाय को उपलब्ध साधनों स्रोतों से जोड़ना, चौथा समुदाय की निर्णय प्रक्रिया एवं संयुक्त शक्ति को विकसित करना मुख्य रूप से इन प्रक्रियाओं से जुड़ सका। संचार सामाजिक ढांचे से भी संबद्ध होता है। संचार के समुचित अभाव में अच्छे तथा महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के प्रति जनता की विपरीत प्रतिक्रिया होती है। जैसे आपातकाल के दौरान 1975 से 77 की अवधि में परिवार नियोजन कार्यक्रम को बड़ी तीव्रता के साथ लागू किया गया। जन स्वीकृति के अभाव में तत्कालीन कांग्रेस सरकार के पराजय का एक प्रमुख कारण बना। इस प्रकार संचार प्रक्रिया के द्वारा जनमत तैयार होता है। साथ ही संचार माध्यम अपने निरंतर प्रसारण के द्वारा कार्यक्रमों एवं श्रोता में साहचर्य उत्पन्न करते हैं। संचार माध्यमों के प्रसार के द्वारा उत्पन्न साहचर्य का ही परिणाम है कि परिवार नियोजन को लोग स्वतः अंगीकार कर रहे हैं। ग्रामीण संचार में संचार के प्रमुख तत्व, पहला श्रोता, दूसरा चयनित सूचना, तीसरा संप्रेषक, चौथा संदेश, पांचवा संचार साधन, छठा संचार माध्यम, सातवां स्रोत, आठवां सूचना पुनर्प्रेषण, नवां मंजिल, दसवां प्रतिपुष्टि फीडबैक है। संचार प्रक्रिया से गांवों को जोड़ना एवं उसे प्रभावी बनाना महत्वपूर्ण समस्या है। ग्रामीण संचार प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए सूचना पुनर्प्रेषण प्रक्रिया या इसके समरूप विकल्प की खोज आवश्यक है। प्रथम एवं द्वितीय प्रेस आयोगों तथा रेडियो टेलीविजन से संबंधित वीजी वर्गीस कमेटी की रिपोर्ट में भी ग्रामीण प्रसारण को विकसित करने पर विशेष बल दिया गया है। ग्रामीण विकास के लिए संचार में परिवर्तनोन्मुख विलगाव विरोधी सहभागिता बढ़ाने वाले सामाजिक न्याय एवं सामाजिक क्षमता को गति देने वाले तत्वों का होना आवश्यक है। यह निर्धारण फरवरी 1979 में हैदराबाद में आयोजित ग्रामीण विकास संचार नीति विषयक गोष्ठी में किया गया था। गांवों में संचार के विकास के लिए आवश्यक है कि गांवों को जनसंचार माध्यमों से जोड़ा जाए। जनसंचार माध्यमों से जुड़े गांवों में सूचना पुनर्प्रेषण की प्रक्रिया को प्रभावी बनाया जाए। प्रथम प्रक्रिया को गांवों तक समाचार पत्र टेलीविजन एवं रेडियो से जोड़कर कार्य रूप में परिणत कर सकते हैं। दूसरी प्रक्रिया अर्थात सूचना का पुनर्प्रेषण को प्रभावी बनाने के अनेक तरीके हैं। ग्रामीण लोगों में व्याप्त संचार की रिक्तता का उन्मूलन रेडियो प्रसारण को लाउडस्पीकर की पुनर्प्रेषण की प्रक्रिया से जोड़कर किया जाता है जा सकता है। लाउडस्पीकर द्वारा पुनर्प्रेषण की प्रक्रिया ग्रामीण परंपरागत माध्यम एवं ग्रामीण परिवेश में सहज ढंग से समाहित हो जाता है। ग्रामीण समुदाय में जब जीवन यापन करने वाले मनुष्य के पास इतना पर्याप्त समय नहीं होता है कि वह बैठकर रेडियो प्रसारण सुने या टीवी देख सके, यह गतिविधि नियमित रूप से अमल में लाना कठिन है। जनसंचार के साधन एजेंसीज ऑफ मास मीडिया। जनसंचार साधन अथवा माध्यम निम्नलिखित हैं। पहला प्रेस और समाचार पत्र, प्रेस एंड न्यूज़पेपर्स। जनमत निर्माण में प्रेस का काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है। प्रेस के द्वारा इश्तहार, पत्र पत्रिकाएं, पुस्तकें आदि छापी जाती हैं, जिसके साधारण एवं विशिष्ट जनता को सूचनाएं प्राप्त होती रहती हैं। इश्तहारों के द्वारा जन साधारण का ध्यान किसी भी समस्या की तरफ आकर्षित किया जा सकता है और उनसे संबंधित साधनों से भी उन्हें अवगत कराया जा सकता है। प्रेस के माध्यम से अपने विचारों को विशाल जन समूह के सामने लाने में सुविधा रहती है। प्रेस से ही समाचार पत्र प्रकाशित होते हैं। जनमत निर्माण में स्वतंत्र, निष्पक्ष तथा न्यायप्रिय समाचार पत्र का काफी महत्व है। समाचार पत्र जनता को सार्वजनिक महत्व की घटनाओं की सूचना देते हैं तथा अपना ठोस और तार्किक मत देते हैं। समाचार पत्र वास्तव में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक आदि समस्याओं का ज्ञान कराते हैं और उसके लिए उपयुक्त सुझाव भी देते हैं। समाचार पत्र शासन की भूलों तथा गलतियों की तीव्र आलोचना करते हैं। समाचार पत्रों के द्वारा ही शासन को जनमत के प्रभाव का ज्ञान हो पाता है और उसे बाध्य होकर अपनी नीतियों में परिवर्तन करना पड़ता है। कुछ समाचार पत्र पूंजीपतियों, राजनीतिक दलों के होते हैं। उन पर इनका पूर्ण रूप से नियंत्रण होता है। वे ऐसी बातों का प्रचार करते हैं जिनसे उनके स्वार्थों की सिद्धि हो सके। वे जनता को वास्तविक सूचनाएं नहीं देते बल्कि उन्हें भ्रम में डालने वाली सूचनाएं देते हैं। ऐसे समाचार पत्र पूंजीवादी समाजों तथा सर्वाधिकारवादी राज्यों में ही पाए जाते हैं। समाचार पत्रों का सरकार, राजनीतिक दल अथवा पूंजीपति के अधीन होना स्वस्थ जनमत के निर्माण में बाधा उत्पन्न करता है। ऐसी दशा में अपना मूल उद्देश्य भूलकर उनके हित में प्रचार करने के साधन मात्र बनकर रह जाते हैं। अतः समाचार पत्रों पर नियंत्रण होना चाहिए। दूसरा साधन है टेलीफोन तथा टेलीग्राफ। टेलीफोन एंड टेलीग्राफ। टेलीफोन और टेलीग्राफ के माध्यम से समाचार कुछ ही मिनटों में देश के कोने कोने में पहुंच जाते हैं। टेलीफोन एवं टेलीग्राफ के माध्यम से विचारों का आदान प्रदान सरलता से हो जाता है। टेलीफोन के द्वारा जनता के प्रतिनिधि एक दूसरे से बातचीत करके विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। इन्हीं के द्वारा संवाददाता और समाचार एजेंसियां दुनिया भर के समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं में भेजते रहते हैं। अतः स्पष्ट रूप से यह बात सिद्ध है कि टेलीफोन और टेलीग्राफ जनमत निर्माण का एक महत्वपूर्ण साधन है। तीसरा है रेडियो एवं टीवी। रेडियो एवं टीवी के द्वारा कोई भी समाचार क्षण भर में ही सारी दुनिया में प्रसारित किया जा सकता है। समाचार पत्रों द्वारा समाचारों की जानकारी प्राप्त करने के लिए शिक्षित होना अनिवार्य है, लेकिन रेडियो एवं टीवी से प्राप्त समाचार शिक्षित और अशिक्षित सभी लोग जान लेते हैं। वर्तमान समय से हमारे देश में जनमत निर्माण के क्षेत्र में रेडियो एवं टीवी एक महत्वपूर्ण साधन है। रेडियो एवं टीवी द्वारा देश के नेता, समाज सुधारक, विशेषज्ञों आदि के भाषण, विचार, आलोचना आदि कोने कोने में सुने जा सकते हैं। रेडियो एवं टीवी पर सरकार का अत्यधिक नियंत्रण रहता है, अतः जनमत निर्माण में रेडियो एवं टीवी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं अदा कर सकते। चौथा है सिनेमा या चलचित्र, सिनेमा और मूवीज़। इसमें सुनना और देखना साथ साथ होने के कारण मस्तिष्क पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। सिनेमा से अशिक्षित लोग भी लाभ उठा सकते हैं। देश की जनता को राजनीतिक तथा सामाजिक शिक्षा देने के लिए सिनेमा एक प्रभावशाली साधन है। सिनेमा के माध्यम से जनता को सामयिक घटनाओं और समाचारों से अवगत कराया जा सकता है और सामाजिक समस्याओं के प्रति जागरूक करने के साथ साथ उनके वास्तविक साधनों के संबंध में सुझाव दिया जा सकता है। सिनेमा के पर्दे पर जनता देश में होने वाली प्रगति को देखती तथा देश और दुनिया के महान नेताओं की बातचीत तथा विचार सुनती और देखती है। इन सब कारणों से सिनेमा जनमत के निर्माण में महत्वपूर्ण साधन है। पांचवा है सार्वजनिक भाषण, पब्लिक स्पीचेस। सार्वजनिक सभाओं में सार्वजनिक हित का प्रश्न उठाया जाता है और वाद विवाद के माध्यम से उन पर प्रकाश डालने का प्रयत्न किया जाता है। इन सार्वजनिक भाषणों में सरकार की आलोचना और जनता की सुविधाओं का वर्णन आदि किया जाता है। इस प्रकार सार्वजनिक भाषण के द्वारा सामाजिक राजनीतिक शिक्षा दी जाती है। इसे शिक्षित और अशिक्षित सभी प्रकार के लोग सुनते हैं और लाभ उठाते हैं। सार्वजनिक भाषण में वक्ता अपनी वाक शक्ति से जनता में ऐसी भावना उत्पन्न कर देता है जो जनमत निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। छठा है राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टीज। प्रजातंत्र में राजनीतिक दलों का होना आवश्यक है। राजनीतिक दल दो प्रकार के होते हैं, एक सत्तारूढ़ दल जिसके हाथ में शासन की बागडोर होती है और दूसरा विरोधी दल। ये दोनों ही दल जनमत को अपने अपने ढंग से प्रभावित करते हैं। जनता में राजनीतिक व सामाजिक चेतना को जागृत करने में राजनीतिक दलों का स्थान महत्वपूर्ण है। राजनीतिक दल अपनी नीतियों तथा सिद्धांतों को संवैधानिक उपायों से शासन के आधारभूत तत्वों के रूप में ढालने का प्रयास करते हैं, अतः वे अपनी नीतियों और योजनाओं के समर्थन में प्रचार करते हैं और इस प्रकार जनमत को एक निश्चित दिशा प्रदान करते हैं। जनतांत्रिक शासन प्रणाली में विरोधी दल शासन की आलोचना करके जनमत को जागृत करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप बहुमत दल अत्याचार या मनमानी नहीं कर पाते हैं। सातवां अगला है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में क्रांतिकारी उन्नति के कारण वर्तमान समय में कंप्यूटर, उपग्रह, इंटरनेट, इनसेट कार्यक्रम आदि के द्वारा संचार क्षेत्र में क्रांतिकारी प्रगति की है और इसका समाज पर काफी गहरा प्रभाव पड़ा है। अगला है धार्मिक संस्थाएं, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस। धार्मिक संस्थाओं के द्वारा धार्मिक उपदेश, पाठ, प्रवचन आदि होते रहते हैं, जिससे धर्म के प्रति आस्था बनी रहती है। इसके द्वारा एक धर्म के अनुयायी आपस में मिलते हैं और विचारों का आदान प्रदान करते हैं। नौवां है शिक्षण संस्थाएं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। शिक्षण संस्थाओं के द्वारा नागरिक चेतना जागृत होती है और नागरिकों का चरित्र निर्माण होता है, जिससे वे दूसरों के भुलावे में न आकर स्वयं के विवेक और बुद्धि से काम ले सकें। उन्हें न्याय, देश हित, अधिकार और स्वतंत्रता के लिए लड़ने की शिक्षा दी जाती है। जिस समाज में शिक्षण संस्थाएं अपनी जिम्मेदारियां को सफलतापूर्वक निभाती हैं, वहां जनसंचार में जनता स्वयं सक्रिय भाग लेती है। दसवां यानी कि अगला है सांस्कृतिक तथा अन्य संस्थाएं, कल्चरल एंड अदर इंस्टीट्यूशंस। लोग समान हित के प्रश्नों पर विचार विमर्श करने के लिए इन संस्थाओं में सम्मिलित होते हैं। यहाँ अनेक मस्तिष्क के मिलने से आपसी अंतःक्रियाओं के परिणाम स्वरूप नए विचार उत्पन्न होते हैं। ये संस्थाएं अपने सदस्यों की मानसिक प्रक्रिया को गति तथा गंभीरता प्रदान करती हैं, जिससे जनमत निर्माण में मदद मिलती है। यह संस्थाएं जन संचार के प्रमुख साधन हैं। ये इस अध्याय का समाप्ति। इस अध्याय के कुछ संदर्भ ग्रंथ, सम रेफरेंसेस ऑफ दिस चैप्टर आर, फर्स्ट कम्युनिकेशन एंड सोशल डेवलपमेंट इन इंडिया रिटन बाय बी कुप्पू स्वामी, सेकंड ह्यूमन कम्युनिकेशन सिस्टम बाय रॉबर्ट हैकर, थर्ड मीडिया कम्युनिकेशन एंड डेवलपमेंट बाय एस सी शर्मा, फोर्थ एन इंट्रोडक्शन टू मास मीडिया बाय एफ फदलार, पांचवा फिफ्थ संचार माध्यमों का प्रभाव रिटन बाय ओम प्रकाश सिंह। ये इस अध्याय का समापन होता है। धन्यवाद।